नमस्कार, संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौड़। 8 अप्रैल 2022 के इस साप्ताहिक कार्यक्रम की सुर्खियां। यूक्रेन संकट के मुद्दे पर यूएन महासभा के आपात विशेष सत्र में प्रस्ताव पारित। मानवाधिकार परिषद से रूसी महासंघ की सदस्यता निलंबित। वैश्विक तापमान में वृद्धि को सीमित करने के लिए अभी या कभी नहीं कार्रवाई का समय, यूएन की एक नई रिपोर्ट। दुनिया भर की लगभग 99% आबादी प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर। और यूएन महासचिव के युवा सलाहकारों का समूह किस तरह जलवायु कार्रवाई में दे रहा है योगदान, सुनिएगा भारत की अर्चना सोरेंग से। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 11वें आपात विशेष सत्र के दौरान गुरुवार को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद मानवाधिकार परिषद में रूसी महासंघ की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया है। जिनीवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 47 सदस्य देश हैं, जो कि 3 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। मानवाधिकार परिषद में रूसी महासंघ की सदस्यता के अधिकार के निलंबन पर पेश किए गए प्रस्ताव के पक्ष में 93 वोट डाले गए। रूस, चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया, ईरान, सीरिया समेत 24 सदस्य देशों ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान, मलेशिया समेत 58 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद से यूक्रेन के अनेक शहरों में भीषण लड़ाई में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, मानवीय संकट उत्पन्न हुआ है और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी लगे हैं। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने शुक्रवार को पूर्वी यूक्रेन में स्थित क्रेमतोर्स्क के एक रेलवे स्टेशन पर कथित रूसी मिसाइल हमले में अनेक आम नागरिकों के मारे जाने की निंदा की है। इससे कुछ ही दिन पहले राजधानी कीव के बाहरी इलाके में स्थित बूचा से रूसी सैन्य बलों की वापसी के बाद सड़कों पर बड़ी संख्या में आम लोगों के शव पड़े होने की तस्वीरें सामने आई थी। इस बीच यूक्रेन के हिंसा प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों के लिए जीवन बेहद कठिन है। यूएन महासचिव के प्रवक्ता स्टेफान दुजैरिक ने बुधवार को न्यूयॉर्क में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा,
On the ground, our humanitarian colleagues say more than 6 million men, women, and children in Ukraine are struggling every day to access water, which is an essential human need.
UN प्रवक्ता कह रहे थे कि जमीन पर मौजूद मानवीय राहत कर्मियों के अनुसार यूक्रेन में 60 लाख से अधिक पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को हर रोज जल की किल्लत से जूझना पड़ रहा है, जो कि एक बुनियादी मानवीय जरूरत है। हजारों लोग बिजली सेवा से वंचित हैं, खाद्य वस्तुओं की कमी है। यूएन एजेंसियां राहत पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं और चेर्निहिव समेत अन्य शहरों में जरूरतमंदों तक राहत सामग्री वितरित की गई है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक महत्वपूर्ण जलवायु रिपोर्ट में संकेत दिया है कि वर्ष 2010 से 2019 के दौरान हानिकारक कार्बन उत्सर्जन का स्तर मानव इतिहास में सबसे ऊंचा रहा है। इसके मद्देनजर वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए तत्काल जलवायु कार्रवाई पर बल दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने जलवायु कार्रवाई के लिए इस पल को अभी या कभी नहीं कार्रवाई का पल बताया है। यूएन न्यूज हिंदी के प्रमुख महबूब खान की रिपोर्ट।
यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC की नवीनतम रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जोर दिया कि अगर तमाम देशों की सरकारें अपनी ऊर्जा नीतियों का पुनः आकलन नहीं करेंगी तो दुनिया गैर आबाद बन जाएगी, यानी मनुष्यों के रहने योग्य नहीं रह जाएगी।
वी आर ऑन अ फास्ट ट्रैक टू क्लाइमेट डिजास्टर। Major cities underwater, unprecedented heat waves, terrifying storms, widespread water shortages, the extinction of a million species of plants and animals.
महासचिव एंटोनियो गुटेरेश कह रहे थे कि हम तबाही के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पानी में डूबे शहर, अभूतपूर्व गर्म हवाएं, भीषण तूफान, व्यापक जल किल्लत, पेड़ पौधों व पशुओं की लाखों प्रजातियों के लुप्त होने के खतरे। ऐसा ही होगा अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं की जाती है तो। ये कोई काल्पनिक कथा या अतिशोक्ति नहीं है, विज्ञान हमें बताता है कि ये वो वास्तविकता है जो मौजूदा ऊर्जा नीतियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होगी। उनकी टिप्पणी में पैनल का ये रेखांकन नजर आता है कि सभी देशों को अपने जीवाश्म ईंधन प्रयोग में बड़े पैमाने पर कमी करनी होगी, ऊर्जा कुशलता बेहतर बनानी होगी और हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधनों का प्रयोग बढ़ाना होगा।
संयुक्त राष्ट्र के चिकित्सा वैज्ञानिकों ने सोमवार को कहा कि दुनिया भर की लगभग 99% आबादी ऐसी प्रदूषित वायु में सांस ले रही है जो अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत सीमाओं से ज्यादा प्रदूषित है। इससे उनके स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक असर पड़ता है। ज्यादा जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
अब दुनिया भर के 117 देशों में रिकॉर्ड 6000 से ज्यादा शहरों में वायु गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है, मगर वहां रहने वाले लोगों की सांसों में अब भी अस्वस्थ स्तर के सूक्ष्म पदार्थ कण व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दाखिल हो रहे हैं। निम्न व मध्यम आय वाले देशों में रहने वाले लोगों को ज्यादा जोखिम है। इन नतीजों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जीवाश्म ईंधन का प्रयोग बंद करने और वायु प्रदूषण के स्तरों को कम करने के लिए टिकाऊ कदम उठाने की महत्ता को रेखांकित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों से पता चलता है कि 42 लाख लोगों की मौत खुले स्थानों पर वायु प्रदूषण की चपेट में आने से होती है। इसके अतिरिक्त जिन 38 लाख लोगों की मौत घरों से निकलने वाले धुएं के कारण होती है, वो गंदे स्टोव और ईंधनों के प्रयोग से निकलता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुरुवार को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य संरक्षण और जलवायु संकट के असर को कम करने की पुकार लगाई है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी का कहना है कि ये सुनिश्चित किया जाना होगा कि सभी लोगों को जीवन रक्षक और जीवन गुणवत्ता बढ़ाने वाले उपकरण, प्रणालियां और वातावरण उपलब्ध हों। और विवरण के साथ महबूब खान।
WHO के मुखिया डॉक्टर टेड्रोस एडेनोम गेब्रियसस का कहना है कि जलवायु संकट दरअसल स्वास्थ्य संकट है। जो गैर टिकाऊ विकल्प हमारी पृथ्वी का दम घोट रहे हैं, वही दरअसल लोगों को भी मार रहे हैं। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि धीरे धीरे गर्म होती दुनिया में मच्छरों से होने वाली बीमारियां ज्यादा दायरे में और ज्यादा तेज गति से फैल रही हैं। अत्यंत चरम मौसम घटनाएं, जैव विविधता हानि, भूमि क्षरण और पानी की किल्लत लोगों को विस्थापित कर रहे हैं और स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं, जबकि दुनिया के सबसे गहरे समुद्रों में और सबसे ऊंचे पहाड़ों पर मौजूद प्रदूषण व प्लास्टिक, खाद्य पदार्थों और रक्त धमनियों में अपना रास्ता बनाते व बढ़ाते जा रहे हैं। उससे भी ज्यादा उच्च प्रसंस्कृत यानी प्रोसेस्ड अस्वस्थ भोज्य पदार्थ और पेयजल बनाने वाली प्रणालियां मोटापे की एक लहर आगे बढ़ा रही हैं, कैंसर व दिल की बीमारियां बढ़ा रही हैं, जबकि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग एक तिहाई हिस्सा भी उत्पन्न कर रही हैं।
भारत में ओडिशा राज्य की अर्चना सोरेंग दुनिया भर से चुने गए उन 7 युवाओं में शामिल हैं जिन्हें UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के जलवायु परिवर्तन पर युवा सलाहकारों के समूह में चुना गया है। अर्चना सोरेंग ने अन्य युवा सलाहकारों के साथ हाल ही में न्यूयॉर्क में UN महासचिव से मुलाकात की। उन्होंने UN न्यूज हिंदी को बताया कि पिछले 2 साल में युवा सलाहकारों के समूह ने जलवायु कार्रवाई के मुद्दे पर किस तरह अपना योगदान दिया है।
सबसे पहले मुझे ये लगता है कि ये जो इनिशिएटिव था महासचिव के द्वारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि हम देखते हैं कि विश्व में बहुत कम ही ऐसे स्पेसेस है या फिर ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं युवाओं के लिए जहाँ पे वो अपनी मन की बात फ्री एंड फ्रैंक डिसीजन मेकिंग को बोल सकते हैं, लीडर्स को बोल सकते हैं या फिर हेड ऑफ स्टेट्स को बोल सकते हैं क्या चैलेंजेस है, क्या प्रपोजल्स है, किस तरह से हम लोग क्लाइमेट सोल्यूशन के ऊपर काम कर सकते हैं। और मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ये भी देखा कि जो सारे मुद्दाए उठाए हैं हमने, जैसे मैं इंडिजिनस इश्यूज पे काम करती हूँ, तो मैंने शुरुआत से ही इस ग्रुप में शामिल होने के बाद से ही मैंने ये एम्फसाइज करना शुरू किया था सेक्रेटरी जनरल को कि हमारी जो आदिवासी समुदाय हैं, हमारी जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं, उनकी जो अधिकार है अपने ज़मीन के ऊपर, अपने जल के ऊपर और अपने जंगल के ऊपर, उसको उनको मिलना ही चाहिए और क्लाइमेट एक्शन के लिए वो काफ़ी ज़रूरी है, रिकग्निशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल। और ये बात को सेक्रेटरी जनरल ने काफ़ी सीरियसली लिया है और उनकी जितने भी स्पीचेस हैं, उनकी जितने भी कम्युनिकेशन में हमने ये भी देखा है कि वो किस तरह से हमारी बातों को महत्व दे रहे हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि इंडिजिनस यूथ को, इंडिजिनस लीडर्स को किस तरह से शामिल करना है UN के प्रोसेसेस में और किस तरह से इंश्योर करने हैं कि उनकी जितनी ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस है, उनकी इतिहास है, उनकी संस्कृति है और उनकी जो वजूद यूथ है, उनकी जो आइडेंटिटी है, उनकी भाषा को किस तरह से हम लोग को सुरक्षित रखना है, संजो के रखना है, तो उसके ऊपर भी वो काफ़ी महत्वपूर्ण दे रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि मैं इंडिया से हूँ तो मैंने ये भी हाईलाइट करने की कोशिश करी है कि इंडिया हमारी देश बहुत ही डाइवर्स है और बहुत ही सदस्य है, अलग कल्चर से हैं, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो कॉन्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं क्लाइमेट एक्शन को। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग डाइवर्सिटी में देखें यूनिटी को, और सॉलिडारिटी की सख्त ज़रूरत है।
जलवायु परिवर्तन पर युवा सलाहकारों के समूह की सदस्य अर्चना सोरेंग। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।